الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو سورہ انعام کی جو بھی آیات تلاوت کی گئیں، یہ آیت نمبر 59، 60، 61 اور 62 ہے، تو ان کا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اگرچہ کہ جمعے کے مجلس کے اندر ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں، لیکن اس میں تو سب شاید شامل نہیں ہو پاتے ہوں گے آپ، تو اس کا ترجمہ، پھر اس کے بعد خلاصہ تفسیر، اور ان کے بعد پھر معارف و مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت جو پیچھے آیات چل رہی تھی جن میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہے کہ آپ ایسے کیجئے، آپ ایسے نہیں کیجئے، آپ ایسے فرما دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے، اب یہ سلسلہ جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی طرف موڑتے ہیں کہ اپنی شان بیان فرماتے ہیں، اپنے بارے میں اپنے بندوں کو بتاتے ہیں اور کھل کے بتاتے ہیں، بڑی تفصیل سے، بڑی زبردست طریقے سے اللہ رب العزت اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں، فرماتے ہیں وعندہو، اور اس کے پاس ہے مفاتح الغیبی، غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں. مفتاح چابی کو کہتے ہیں اور مفاتح چابیاں، غیب کی چابیاں اس کے پاس ہیں. لا يعلمها الا هو، اس کا علم نہیں ہے کسی کے پاس سوائے اس کے، کوئی نہیں جانتا ان کا علم، یعنی غیب کی چیزوں کا علم، غیب کی باتوں کا علم کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. ہوا یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے، جو کہ پوائنٹ کر رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف. اللہ رب العزت کا نام جو ہے وہ اس کا مرجع ہے، جیسے کہ پچھلی آیت میں واللہ اعلم بالظالمین، اس سے پیچھے والی آیت ختم ہوئی تھی، تو وہی آیت، اس آیت کے اندر اللہ کا نام موجود تھا، اور اس کے بعد والی آیات کے اندر اللہ تعالی کے لیے ضمیر استعمال ہوئی ہے، یعنی پروناؤن ہوا. لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور تری میں. وما تسقط، اور نہیں، یہ جو ما ہے یہ بھی نفی نفی والا ما ہے، اس سے پیچھے جو لا تھا وہ بھی نفی والا یا لا تھا، یعنی نہیں. تسقط جھڑتا یا ساقط ہوتا، ٹوٹتا نہیں جھڑتا. من ورقتن، ورقہ کا لفظ جو ہے، جیسے ہم اردو کے اندر ورق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو کاغذ کے لیے یا کسی پتلی چیز کے لیے، جیسے چاندی کا ورق بھی ایک زمانے میں، وہ زمانہ بھی کوئی بہت پرانا زمانہ نہیں ہے، ہمارے اپنے لڑکپن بچپن کا زمانہ، کہ مٹھائی کے اوپر چاندی کے ورق چڑھائے جاتے، خصوصاً وہ لڈوؤں کے اوپر، तो वो इतने बारीक होते थे, इतने पतले होते थे कि उनको उनके लिए वर्क का लफ्ज इस्तेमाल होता था। वैसे कागज के लिए भी वर्क का लफ्ज इस्तेमाल होता है। यहाँ पर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स के हिसाब से वराका का जो लफ्ज है वो पत्तों के लिए इस्तेमाल हुआ। मा तस्कुतु मिन वरकतिन, ये पत्ते में से कोई पत्ता नहीं गिरता, इल्ला यालमुहा, सिवाय इसके कि वो उसकी इल्म में होता है, वो उसको जानता है, यानी अल्लाह जानता है उस पत्ते को जो कि गिर रहा है। वला हब्बतिन, ना कोई दाना, हब्बा दाने को कहते हैं, यानी कोई जर्रा भी अगर इसके लिए इस्तेमाल किया जाए तो कोई हब्बा नहीं गिरता। फी गुलुमात अर्दी, यानी वरकतन, ये तस्कुतु मिन वरकतन वला हब्बतन, कि नहीं कोई वरका गिरता ना कोई हब्बा गिरता, कोई दाना गिरता। फी गुलुमात अर्दी, जमीन की तारीखियों में, यानी एक तो होता है ना कि जमीन में कोई दाना नहीं गिरता, कोई पत्ता नहीं गिरता, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला को पता है उसका, लेकिन उसको मजीद अल्लाह ताला जो है वो इन्फोर्स कर रहे हैं, मजीद इसकी तफसील में जा रहे हैं, या मजीद जो है ना वो अपने इल्म की वसअत को बयान फरमा रहे हैं कि अगर वो जुलुमातिल अर्द के अंदर भी गिरता है ना, तारीखियों के अंदर भी गिरता है, तो भी अल्लाह ताला उसको जानते हैं, वो अल्लाह के इल्म के बगैर नहीं गिरता है। वला रकबिन, ना कोई हरी चीज, रुतूबत कल अब उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, रुतूबत गीलेपन के लिए, भाई इस चीज के ऊपर रुतूबत है, यानी कुछ पानी के कतरे हैं या मॉइस्चर है, मॉइस्चर को के लिए जो है वो रुतूबत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। तो वला रकबिन, ना कोई हरी चीज है जिसके अंदर कुछ मॉइस्चर हो, जिसके अंदर कुछ कुछ पानी हो, किसी भी शक्ल में हो पानी, किसी भी तादाद, किसी भी मकदार में पानी हो, तो वो चीज रत्ब कहलाएगी। वला याबिसन, और ना कोई सूखी चीज, याबिस तो ये उर्दू के मुहावरे में भी ये फिर इस्तेमाल होता है, रत्ब यानी रत्ब व याबिस, यानी गीली और खुश्क चीज। इल्ला फी किताबिन, सिवाय इसके के वो एक खुली हुई किताब के अंदर है, एक एक बिल्कुल वाज़ह किताब के अंदर है, मुबीन किताब मुबीन के अंदर है। यानी किताब का मतलब जो होता है वो जरूरी नहीं होता कि कोई बाकायदा लिखी हुई चीज हो, बल्कि किताब का मतलब ये भी होता है कि कोई चीज तयशुदा हो, कोई चीज जो है वो डिक्लेयर कर दी गई हो, तो वो उसके लिए भी किताब का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो वो एक प्री डिक्लेयर्ड अल्लाह ताला के इल्म के अंदर है, अल्लाह ताला ने उसको लिख करके रखा हुआ है, अल्लाह ताला ने उसको डिसाइड करके रखा हुआ, इल्ला फी किताब मुबीन, वह हुआ और वो अल्लदी वो है, ये तवफाकुम बिल्लैली, जो कि तुम्हें वफात देता है रात के वक्त, तुम्हें वफात देता है। कुम की जमीर किसकी तरफ पॉइंट कर रही है, हमारी तरफ, जो इस कुरान अजीम शान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से पढ़ रहे हैं, हमसे मुखातिब है कि वो है जो कि तुमको वफात देता है रात के वक्त, रात के बाद हर रात को वफात देता है। तो यहां पर वफात का मतलब क्या होगा कि अल्लाह ताला हमारी रूह के एक हिस्से को अपने कब्जे में ले लेते हैं, जबकि दूसरा हिस्सा जो होता है वो हमारे अंदर मौजूद रहता है। तो यहां पर वफात से मुराद कब्जे में ले लेना, यहाँ पे वो वाली वफात मुराद नहीं, जैसे कि उर्दू जुबान के अंदर हम बिल्कुल फाइनल मौत को जो है वो वफात का के लफ्ज से ताबीर करते हैं, बल्कि कब्जे में ले लेना। वफात का लफ्ज आगे भी इस्तेमाल होता है, तवफ्फतहु रुसुलुना, ये आगे की आयात में आ रहे हैं, वहां पे जो है वो जिसको के यानी मौत कहा जाता है हमारे यहाँ, वो वाली वफात मुराद है, यहाँ पर वो वाली वफात मुराद नहीं है, बल्कि नींद सोना मुराद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी तरह से वफात का जो लफ्ज है कुरान मजीद के अंदर एक और भी जगह बड़े मुख्तलिफ पैराए के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर कि इन्नी मुतवफी का, कि बेशक मैंने तुम्हें वफात दी, मैंने तुम्हें वफात दी, ईसा अलैहिस्सलाम को वफात दी नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम ने तो वापस आना है दुनिया के अंदर, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम तो जिंदा हालत में, ऐसा नहीं है कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको मार दिया फिर उसके बाद दोबारा जिंदा कर देंगे, नहीं, मारा ही नहीं ईसा अलैहिस्सलाम को, मौत दी ही नहीं ईसा अलैहिस्सलाम को, लेकिन उनके लिए भी मुतवफी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो उसका भी मतलब क्या कि मैंने तुम्हें जो है वो अपने पास बुला लिया, अपने कब्जे में ले लिया, दूसरे आसमान के ऊपर ला करके तुम्हें स्टेशन कर दिया है, अब तुम दूसरे आसमान के ऊपर दुनियावी हयात के साथ जिंदा हो, जिस तरह दुनिया के अंदर इंसान जिंदा होते हैं उसी तरह तुम दूसरे आसमान पे ऐसे जिंदा रहोगे, ऐसे जिंदा हो, वराफ़ुका इलैया, और मैंने तुम्हें उठा लिया अपनी तरफ। बहरहाल तो वफात के दो लफ्ज हैं, देखें कैसे कैसे मानों के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, नींद के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, मौत के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, और जमीन से आसमान की तरफ उठा लिए जाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम की कोई कब्र नहीं है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को मौत आई ही नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम आलम बरज़ख में नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान पर है, जैसे कि हदीस से हमें पता चलता है, तो उसके लिए भी वफात का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अरबी जुबान की एक गहराई है जिसको समझे बगैर जो है वो कुरान की तफसीर नहीं की जा सकती, कुरान का तर्जुमा नहीं किया जा सकता, वरना जिसको वफात का लफ्ज उर्दू जुबान के वजन पे आता होगा तो वो इन तीनों मकामात के ऊपर मौत ही समझेगा कि वफात देने का मतलब मौत है, तो रोजाना रात को जो है वो मर जाते हैं सारे के सारे, खाना कि नहीं रात को तो नहीं मरते। तो वहुवल्लज़ी यतवफ़ाकुम, वो है जो कि तुम्हें रात को कब्जे में ले लेता है, वयालमु मा जरहतुम बिन नहारी, और वो जानता है जो तुम दिन के अंदर कर चुके हो, जरहतुम जराहा यानी जो जराहत के काम तुम कर चुके हो, तो जैसे वो सर्जरी के लिए इस्तेमाल करते हैं उर्दू में भी जराहत सर्जरी, यानी जो तुम हरकतें कर चुके होते हैं ना दिन के अंदर, उन सबको वो जानता है। सुम्मा यबअसुकुम फी, फिर तुमको उठा देता है उसमें, यानी दिन का वक्त जब आता है तो तुमको वो उठा देता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने सुबह को उठने की ये दुआ सिखाई, ठीक है, बादमा अमातना, तो रात के लिए जो है वो नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने मौत का लफ्ज इस्तेमाल किया, हालांकि रात को हमारी सांस भी चल रही होती है, जरा सी कोई आवाज आ जाए हम जाग जाते हैं, करवटें भी पलट पलट रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे किस्म की मौत होती है जिसमें पूरी की पूरी रूह जो होती है वो जिस्म से बाहर नहीं निकलती है। तो सुम्मा यबअसुकुम फीही, कि तुम्हें दिन के वक्त फिर दिन दिन में फीही नहार में, यानी फीही में जो हा की जमीर है ये किस तरफ पॉइंट कर रही है, अन्नहार यानी दिन, कि दिन का वक्त जब आता है तो तुमको उठा देता है, लियुक्दा अजलुम मुसम्मा, ताकि पूरा हो वो वादा जो मुकरर हो चुका है, अजल एक मियाद, मुसम्मा जो कि पहले से तयशुदा है, मुसम्मा अंग्रेजी में अगर तर्जुमा किया जाए तो इसका तर्जुमा बनेगा नेम्ड, नेम इस्म कहते हैं ना नाम को, तो मुसम्मा जैसे उर्दू में कहते हैं इस्म बा मुसम्मा, कि ये शख्स जो है ये अपने नाम के ही मुताबिक है, इसम बा मुसम्मा, ठीक है, तो एक ऐसी मियाद है जो कि पहले से प्री डिटरमिंड है कि किसने किस वक्त जो है वो मरना है, तो लियुक्दा उसको पूरा किया जाए, ठीक है, उसको पूरा किया जाए, इसलिए तुम्हें रोजाना सुबह को अल्लाह ताला उठा भी देते हैं। सुम्मा इलैहि मरजुकुम, फिर उसके बाद जब वो अजल मुसम्मा आ जाएगी तुम्हारे लिए तो फिर क्या होगा, सुम्मा उसके बाद इलैहि मरजुकुम, उसकी तरफ तुम्हें लौटाया जाएगा, यानी तुम्हारे लौटने की जगह उसके पास होगी, उसके करीब होगी, क्या मतलब कि रूह जब फरिश्ते निकालते हैं तो रूह को जो है वो ऊपर लेके जाते हैं, फिर अल्लाह ताला जो है वो उसको वापस भेज देते हैं दुनिया में, वापस भेज देते हैं कब्र के अंदर, तो रूह जो है होती है फिर कब्र में रहती है। तो सुम्मा इलैहि मरजुकुम, फिर उसके बाद तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे। सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, फिर वो खबर देगा, नब्बा युनब्बिउ, नबा खबर, तो युनब्बिउ वो खबर देगा तुमको, युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, उसके बारे में जो तुम अमल किया करते थे, तुम्हें उसके बारे में बताएगा कि तुम क्या करते थे। इंसान करता खुद है लेकिन करके भूल जाता है, हालांकि खुद उसने काम किया होता है लेकिन करके भूल जाता है। निस्यान की बीमारी हर इंसान को लगी हुई है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ निस्यान नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने इल्म मुहीत के को इस्तेमाल करते हुए फिर सबको बताएंगे कि तुम क्या करते रहे हो, और कैसे बताएंगे दुनिया की जिंदगी में, तो फरिश्तों के, यानी दुनिया और कब्र के अंदर, कब्र की जिंदगी में फरिश्तों के वास्ते से बताएंगे, ठीक है। और फिर कयामत के दिन जो है वो बकायदा कलाम भी फरमाएंगे इंसानों से, और डायरेक्ट बताएंगे तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, हत्ता कि काफिर से भी कलाम फरमाएंगे, मोमिन से भी कलाम फरमाएंगे, लेकिन कब्र के अंदर जो है ये कलाम वराम जो है ये सारा फरिश्तों के जरिए से हो रहा है। तो ये नब्बेकुम बिमा कुंतुम तअमलून, वह हुआ और वो अल काहिर गालिब है, फौका इबादिही अपने बंदों के ऊपर है, यानी गालिब है, ऊपर है, अपने बंदों के तहत नहीं है। तहत कहते हैं नीचे को, फौक कहते हैं ऊपर को। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अपने बंदों के ऊपर है। बंदों से क्या मुराद? हर मखलूक, हर मखलूक, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जिन हो, चाहे वो फरिश्ते हो, चाहे वो जमादात हो, नबातात हो, हैवानात हो, चाहे वो आसमान हो, चाहे वो अर्श हो, अल्लाह ताला उन सब के ऊपर है। फौका इबादिही, वयुरसलु अलैकुम, और वो भेजता है तुम पर हफवा, हिफाजत करने वाले, यानी ऐसे फरिश्ते मुतय्यन किए हुए हैं जो कि तुम्हारी हिफाजत का काम भी करते हैं। हत्ता इदा जा अहदकुमुल मौत, हत्ता के तुम में से किसी के ऊपर मौत आ जाती है, जा वो आ गया, तो अहदकुम तुम में से किसी एक पर, अल मौत मौत आ जाती है, तुम में से किसी पर मौत आ जाती है, चाहे वो हजारों के ऊपर एक साथ मौत आ जाए, चाहे एक एक करके जो है वो अलग अलग टाइम के ऊपर मौत आए, कोई बड़ा इवेंट हो जाए, जलजला खुदा ना खास्ता, कोई सैलाब, कोई ऐसा, तो कई 100 लोग जो है वो एक साथ लुकमा अजल बन जाते हैं, लेकिन उन सब की जान अलग अलग निकाली जाती है। तुम में से किसी एक के ऊपर मौत आ जाए, तवफ्फत रुसुलुना, तो हमारे रसूल, हमारे रसूल क्या नबी अलैहिस्सलाम नहीं, बल्कि रसूल जो अल्लाह ताला मुख्तलिफ कामों के लिए भेजते हैं, कोई भी टास्क दे करके उसको भी रसूल कहा जाता है। तो यानी ये कोई आसमानी किताब लेके नहीं आ रहे होते हैं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक हुक्म का फरमान लेकर के आ रहे होते हैं फरिश्ते, तो उनके लिए भी रसूल का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो रसूल होना, तवफ्फत हो रसूल होना, तो वो उसको, वो जो रसूल होते हैं यानी फरिश्ते, वो उसको कब्जे में ले लेते हैं, यानी उसकी रूह को कब्जे में ले लेते हैं। अब ये वाली जो रूह कब्जे में होती है ना, ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रूह होती है, ऐसी रूह निकाल लेते हैं कि अब ये जिस्म जो पीछे रह जाता है ये सांस भी नहीं ले सकता, ये करवट भी नहीं ले सकता, ये पलक भी नहीं झपक सकता, तो इसकी रूह को जो है वो कब्जे में ले लेते हैं। वहुम ला युफर्रितून, और वो कोताही नहीं करते, या इस तरह से भी कि पीछे कुछ नहीं छोड़ते, कोई कमी बेश कमी कमी नहीं करते। फर्रता युफर्रितु तफरीतन, तफरीत का लफ्ज जो होता है वो किसी चीज को कम करना, नहीं कमी नहीं करते, वो पूरा का पूरा काम करते हैं, पूरी की पूरी रूह निकाल लेते हैं। सुम्मा रुद्दू इलल्लाही, फिर पहुंचा देंगे अल्लाह की तरफ, पहुंचाए जाएंगे, रद्दा या रुद्दू, रुद्दू वो लौटाए जाएंगे, रद्द किए जाएंगे, रद्द किए जाने का मतलब कि वापस कर दिया, तो आए भी वहीं से थे और अब वापस कर दिया गया है, इलाल्लाह, अल्लाह की तरफ। जबी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ, हम अल्लाह ही के लिए हैं, आए भी उधर ही से हैं और आए भी अल्लाह ही के लिए हैं। व इन्ना इलैहि राजिऊ, उसी की तरफ रुजू करने वाले हैं। तो सुम्मा रुद्दू इलाल्लाह, सेम कॉन्सेप्ट है कि फिर उनको अल्लाह की तरफ लौटाया जाएगा। वो कौन है? मौला हम, वो उनका मौला है। अल्लाह मौला, अल्लाह मौलाना वला मौला। ईमान वाले क्या कहते हैं? अल्लाह मौलाना, अल्लाह ताला हमारा मालिक है, अल्लाह ताला हमारा मददगार है। वला मौला लकुम, तुम्हारा मददगार नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर मौला से मुराद जो है वो हर एक का मौला है, ठीक है। अल हक, सच्चा मौला। अच्छा, सच्चा मौला तो सिर्फ अल्लाह ताला ही है, उसकी तरफ लौटाया जाएगा। अला लहुल हुक्म, अला ये एक तरह जैसे हमारे मशायख को तर्जुमा करते हैं कि खूब गौर से सुन लो, कान खोल कर सुन लो। लहुल हुक्म, उसी के लिए है। अल हुक्म यानी हुक्म जो है वो उसी की मिल्कियत है, उसी की मिल्कियत है। लहू अल हुक्म, वह हुआ असरउल हासिबीन, और वो सबसे तेज है हिसाब लेने में, सबसे तेजी से हिसाब लेने वाला है या जल्दी हिसाब लेने वाला है। तो ये तो तर्जुमा हो गया इसका। इसी को तर्जुमे के बारे में सवाल हो तो पूछ सकती हैं, और फिर उसके बाद खुलासे तफसीर जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर बयान हो कुरान में से हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर नकल फरमाते हैं। तो फरमाया कि और अल्लाह ताला के पास, व इंदहू अल्लाह ताला के पास यानी उसकी कुदरत में, ठीक है। अल्लाह ताला के पास का मतलब कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर जहां पे मौजूद हैं, तो वहां पे चाबियों के गुच्छे लेके नहीं बैठे हुए, जैसे कोई घर की मालकन होती है ना, पुराने जमाने में इस तरह का होता था। वो बड़े बड़े जो है ना, वो चाबियों के गुच्छे होते थे, वो मालकन साहिबा जो है वो अपने साथ लेके बैठी होती थी, या कोई और इस किस्म का चाबियों वाला हो वो चाबियों के साथ। नहीं, अल्लाह ताला के पास होने का मतलब यह है कि उसकी कुदरत में है, और कोई ऐसी फिजिकल चाबियां भी होनी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। यानी उसकी कुदरत है। तमाम खजाने, मख्फी अशिया, मख्फी अशियाए मुमकिना, यानी जो कुछ भी मुमकिन है ना लेकिन वो छुपा हुआ है, तो उन तमाम खजानों के, उनमें से जिस चीज को जिस वक्त, यानी ये तफसीर अब कर रहे हैं इस बात की कि खजानों की चाबियां होने का मतलब क्या है, कि उनमें से जिस चीज को जिस वक्त और जिस कदर चाहें जहूर में लाते हैं, ठीक है, जाहिर कर देते हैं। गैब में तो वो है, अल्लाह ताला के इल्म में है, अल्लाह ताला की कुदरत में है, लेकिन अल्लाह ताला जब चाहते हैं किसी चीज को जाहिर फरमा देते हैं, जितना चाहते हैं जाहिर फरमा देते हैं। इन अशिया में अजाब की किस्में भी आ गईं, जो छुपा हुआ अजाब किसी को नहीं नजर आ रहा कि किसके ऊपर क्या अजाब आने वाला है, किसके ऊपर क्या अजाब आता है, लेकिन जिसके ऊपर अजाब आएगा तो कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, क्यों आएगा, नहीं पता किसी को, नहीं नजर आता। लेकिन जब नजर आता है तो उस वक्त अल्लाह ताला छुपी हुई चीज को जाहिर कर देते हैं। मतलब ये कि और किसी को इन चीजों पर कुदरत नहीं है, तो अजाब में लाना जो है वो किसी की कुदरत में नहीं है, फरिश्ते की कुदरत में भी नहीं है जब तक कि अल्लाह ताला उसको हुक्म दे के भेजे नहीं अजाब लाने के लिए, और नबी की कुदरत में भी नहीं, जैसे कि पिछली आयात के अंदर तफसील के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। लौ अन्ना इंदी मा तस्तअजिलून बिही लक़ुदिय अल-अम्रु बैनी वबैनकुम। तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया, इनसे कह दीजिए कि मेरे बस में नहीं अजाब लाना, अगर होता ना तो तुम्हारी इतनी ज्यादा तकलीफें और अजियतें और इतनी ज्यादा जो है ना वो हरकतें मेरे बर्दाश्त से बाहर थी, मैं तुम्हारे ऊपर अजाब ले आता, लेकिन अल्लाह की बर्दाश्त मुझसे ज्यादा है, ठीक है। मेरे पास जो भी बर्दाश्त है सब सारे इंसानों से ज्यादा है, लेकिन अल्लाह से कम है। मेरे पास जितनी बर्दाश्त है ना, अल्लाह ताला की बर्दाश्त इतनी है कि वो तुम्हारे ऊपर अजाब नहीं लेकर के आता है। तो फरमाया कि किसी को इन चीजों पर कुदरत नहीं है, ना अजाब के ऊपर और ना जो है वो सवाब के ऊपर, किसी को कुदरत नहीं है। बंदा करता रहे नेकी काम करता रहे, लेकिन अगर अल्लाह ना चाहे ना तो उसको सवाब नहीं मिलेगा, अल्लाह ना चाहे तो उसको सवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, ये अल्लाह की कुदरत में है, सवाब भी और अजाब भी। और जिस तरह कुदरत कामिला उनके साथ खास है, कामिल कुदरत अल्लाह के साथ खास है, इसी तरह उनका इल्म ताम और कामिल भी। ठीक है, यानी कुदरत अल्लाह ताला ने थोड़ी थोड़ी सी तो अपनी मखलूक को दी है। ठीक है, जैसे हमें कुछ कुदरत दी है कि हम जो है वो फैसला कर सकें कि सीधा रास्ता अख्तियार करना है कि उल्टा रास्ता अख्तियार करना, तो ये कुदरत है ना हमारे पास, फैसला करने की कुदरत है। ठीक है, लेकिन कामिल कुदरत जो है वो सिर्फ अल्लाह के पास है, हमारे पास ज्यादा कुदरत नहीं है। फैसला करने की कुदरत हो गई या कुछ और बहुत ज्यादा खींचतान करके अगर कुछ अमल की कुदरत भी अपने लिए निकाल लें, ये भी हमारे पास कुछ अमल की भी कुदरत है, लेकिन बहुत ही थोड़ी सी कुदरत है। कामिल कुदरत तो सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन सिर्फ कुदरत नहीं है बल्कि इल्म भी है मुकम्मल। ताम का मतलब होता है बिल्कुल, यानी आखिर दर्जे तक, और कामिल हर तरह से मुकम्मल। चुनाचे इन खजाइन मख्फिया को कोई नहीं जानता बजुज अल्लाह ताला, और वो उन तमाम चीजों को भी जानता है जो खुश्की में है और जो दरिया में है, ला रकबिन यानी वला रकबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, कि जो खुश्की में है और जो सॉरी वला माफिल बर्री वल बहरी, ये तो हम पहली आयत ही पढ़ रहे हैं, जो खुश्की में है और जो दरिया में, और कोई पत्ता पत्ता तक दरख्त से नहीं गिरता मगर वो उसको भी जानता है, और कोई दाना तक जमीन के तारीख हिस्सों में नहीं पड़ता, और ना कोई तर और खुश्क चीज जैसे फल वगैरह के, जैसे जो वेट फ्रूट्स होते हैं, जूसी फ्रूट्स होते हैं उनको हम रतब कह सकते हैं, और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अगरचे के ड्राई फ्रूट्स में भी कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, लेकिन एक मिसाल के तौर पर ड्राई फ्रूट्स को आप कह दें याबिस, तो ना कोई तर और खुश्क चीज गिरती है मगर ये सब किताब मुबीन यानी लोहे महफूज में मरकूम है। तो किताब मुबीन को हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने यहाँ पर लोहे महफूज से तारीफ किया है, लोहे महफूज उसी का नाम है किताब मुबीन। और वो अल्लाह ताला ऐसा है कि अक्सर रात में सोने के वक्त तुम्हारी रूह नफसानी को, जिससे एहसास व इदराक मुतअल्लिक है, एक गुना कब्ज कर लेता है, यानी एक हद तक कब्ज कर लेता है, पूरा कब्ज नहीं करता, एक हद तक एक गुना कब्ज कर लेता है। और अक्सर रात में क्यों फरमाया, क्योंकि कभी रात को लोग जाग भी रहे होते हैं किसी भी वजह से। ठीक है, तो इस वजह से तफसीरन अक्सर का लफ्ज बीच में ऐड कर दिया, अक्सर लोग सो रहे होते हैं, या कम अज कम थॉमस एल्वा एडिसन की मेहरबानी से पहले तो लोग सो ही रहे होते थे, अब तो एडिसन साहब ने माशाल्लाह जो नेमत अता फरमाई है, मतलब खाली बात समझाने के लिए कह रहे हैं कि जो एडिसन
आप
कल भी ईजाद कर दिया है, तो अब रात को सोना वोना जो है वो उसकी रिवायत तकरीबन खत्म हो गई है, तो जाग रहे होते हैं सारे रात को, शुगर के पेशेंट बन रहे होते हैं, मूड कर देंगे क्लास हो रही है। ऐसे इल्म हासिल करते हैं तभी तो अमल की तौफीक मिलती है फिर। चले कोई बात नहीं, सुनने की कोशिश तो करें ना। तो फरमाते हैं कि रात में सोने के वक्त तुम्हारे रूह नफसानी को, यानी रूह की जो होती है वो दर्जात होते हैं, तो रूह नफसानी फरमाया कि जिसका ताल्लुक हमारे इस अनफुस के साथ, नफ्स के साथ है, तो उसको जो है ना वो अल्लाह ताला एक गुना कब्ज कर लेता है, यानी मुअत्तल कर देता है। एक तो मुअत्तल हो जाता है कि जी जिस्म के साथ उसका राबता जो है ना वो कुछ खत्म हो जाता है, और वो रूह जो है फिर वो परवास करना शुरू हो जाती है, आलमे अमसाल के अंदर जाने की कोशिश करना शुरू हो जाती है, हद तक कि कभी कभी जो है वो आलमे अमसाल के अंदर तक पहुंच जाती है, फिर वो वहां पे ख्वाब में चीजों को देख रही होती है कि ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर उसके बाद वहां से वापस आ जाती है, तो ये सारा काम हो रहा होता है उस वक्त, सस्पेंडेड हो जाता है, फिर दूसरी तरफ से जो है वो दूसरे काम चल रहे होते हैं। और जो कुछ तुम दिन में करते हो उसको दवामन जानता है, फिर फिर तुमको दिन में जगा उठाता है ताकि इसी सोने जागने के दौरों से में यादें मुअय्यन दुनियावी जिंदगी की तमाम कर दी जाए। ठीक है, दिन रात दिन रात दिन रात, रोजाना जो है वो ये पहिया चलता रहता है। दिन से फिर घूम के रात में जाता है, रात से घूम के दिन में आता है, और यही जो है वो इंसान की जिंदगी के अय्याम होते हैं, और यही कटते 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 बिलाखिर कट ही जाते हैं। जैसे वो एक वाकया लिखा है ना उन्होंने, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने, कि वो सफेद चूहा, वो जो एक आदमी भाग रहा था उसके पीछे सांप लगा हुआ था, उसने जो है वो कुएं में छलांग लगा दी सांप से बचने के लिए, और उसके हाथ में एक झाड़ी आ गई, झाड़ी को पकड़ के जो है वो लटका हुआ था, ठीक है, ऊपर जो है वो हाँ शेर उसको पीछा कर रहा था, तो शेर से बचने के लिए उसने कुएं में छलांग लगा दी, तो कुएं में एक झाड़ी लटक रही थी तो उसको उसने पकड़ लिया। अब वो झाड़ी को लटक करके पकड़ करके लटका हुआ है, ऊपर शेर है, कुएं के मुंह पर शेर है, और नीचे उसने देखा कि एक अजदहा है। ठीक है, यानी अगर वो झाड़ी टूटी तो वो नीचे गिरेगा और अजदहा जो है वो उसको निगल लेगा। ठीक है, दसेगा नहीं, निगल लेगा। तो इतनी देर में वो क्या देखता है कि दो चूहे हैं, एक सफेद चूहा है और एक काला चूहा है। वो दोनों चूहे जो है ना वो उस झाड़ी को कतरना शुरू हो गए। ठीक है, कतरना शुरू हो गए। अब वो जब झाड़ी जिससे वो लटका हुआ है उसको चूहे कतर रहे हैं, तो अब इसका खौफ कितना बढ़ जाना चाहिए ना, कि अब ये झाड़ी टूटेगी, मैं नीचे गिरूंगा और मुझे अजदहा खा जाएगा, ऊपर भी नहीं आ सकता, उसको पकड़ करके गोया के पुल करके अपने आप को ऊपर निकाल ले, क्योंकि ऊपर जो है वो शेर उसको खाने के इंतजार में बैठा हुआ है, नीचे गिरेगा अजदहा खा जाएगा, और चूहों को वो रोक भी नहीं सकता क्योंकि उसकी पहुंच ही नहीं है चूहों तक। इतने में उसको जो है एक शहद की मक्खियों का छत्ता नजर आता है, जहां तक उसका हाथ जाता है शहद की मक्खियां उसको छोड़ के जा चुकी हैं, और उस छत्ते के अंदर शहद है। अब ये अपनी उंगली से उस शहद को निकालता है और चाटना शुरू कर देता है, और शहद को चाटने में वो ऐसा मशगूल होता है कि वो शेर को भी भूल जाता है, वो अजदहे को भी भूल जाता है, और वो उन चूहों को भी भूल जाता है जो कि उस झाड़ी को कतर रहे। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने ये वाकया लिख करके फरमाया कि ये इंसान की जिंदगी की हकीकत है, कि मौत जो है वो अजदहे की तरह से उसको खाने के इंतजार में है, उसको पता है कि जिस जिंदगी की रस्सी से या झाड़ी से वो लटका हुआ है उसको दिन और रात चूहों की तरह से कतर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी ख्वाहिशात की पूरा करने में ऐसे मसरूफ होता है जैसे ये इंसान उस शहद को चाटने में मशगूल होकर के सब भूल जाता है, ना उसको शेर याद रहता है, ना उसको जो है अजदहा याद रहता है, ना उसको चूहे याद रहते हैं। ये हमारी जिंदगी की हकीकत है। लेकिन जो गाफिल नहीं होते, जो जाकिर होते हैं ना, वो नहीं भूलते, उनको हर लम्हे ये बात याद रहती है कि मेरे जो दिन और रात गुजर रहे हैं ये मेरी जिंदगी में से अय्याम कम हो रहे हैं, और मौत एक ऐसी हकीकत है जिस तक मैंने हर सूरत में पहुंचना है, तो अब जो मेरी जिंदगी का मकसद है जिसके जरिए से मैंने मौत की बाद की जिंदगी को अच्छा बनाना है, मैं उस मकसद में लग जाऊं, और वो मौत को कभी भी नहीं भूलते। तो यही जो है वो दिन रात का मामला हजरत ने जैसे यहाँ तफसीर में बयान फरमाया है कि दुनियावी जिंदगी के जो है ना ये दिन रात जिस तरीके से कट रहे होते हैं ताकि तुम्हारी मियाद मुकम्मल हो जाए और फिर तुम्हारी मौत आ जाए, फिर उसके बाद तुम इलाही हिम्मत जो, और फिर अल्लाह ताला की तरफ तुम लौटाए जाओ। फरमाते हैं कि मियाद मुअय्यन दुनियावी जिंदगी की तमाम पूरी तमाम कर दी जाए, फिर उसी अल्लाह की तरफ मर कर तुमको जाना है, फिर तुमको बतला देगा जो कुछ तुम दुनिया में किया करते थे। सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, तो उसके मुनासिब जजा और सजा जारी करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने यही कानून यही उसूल बनाया दुनिया के अंदर के बाकायदा जजा और सजा के सिस्टम रखा है, और वही अल्लाह ताला कुदरत से अपने बंदों के ऊपर गालिब है, बरतर है, वहुवल काहिरु फौक इबादिही, और ए बंदों तुम पर तुम्हारे आमाल और जान की निगरानी करने वाले फरिश्ते भेजते हैं, वयुर्सिलु अलैकुम हफ़ज़ा, जो जिंदगी भर तुम्हारे आमाल को भी देखते हैं, यानी किरामन कातिबैन, जो तुम्हारे आमाल को देख रहे हैं, लिख रहे हैं, और तुम्हारी जान की भी हिफाजत करते हैं। जो हिफाजत करने वाले फरिश्ते किरामन कातिबैन के अलावा हैं, यहां तक कि जब तुम में से किसी को मौत आ पहुंचती है, हत्ता इजा जा अहदकुमुल मौत, तो उस वक्त उसकी रूह हमारे भेजे हुए फरिश्ते कब्ज कर लेते हैं और जरा कोताही नहीं करते। तो मौत के फरिश्तों की टीम आ जाती है और वो टीम फिर कब्ज करने का काम कर रही होती है, या वो जो हिफाजत के लिए फरिश्ते मुतय्यन थे वही मौत के फरिश्ते का रोल इख्तियार कर लेते हैं, और अब वो हिफाजत की बजाय कब्ज करने का काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। अल्लाह हुक्म दे इनकी हिफाजत करो, हिफाजत करते हैं। अल्लाह हुक्म दे अब इसको जो है वो गाड़ी से टक्कर करवा दो, ठीक है, गाड़ी की टक्कर वाला इंतजाम करो ताकि फिर इसकी मौत का बहाना बन जाए, या कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई ऐसा जो है वो ट्यूमर इसके अंदर पैदा होने दो या डाल दो इसके अंदर, तो वो इसकी मौत का बहाना बन जाए, ठीक है, या कोई और चीज मौत का बहाना बना दो और फिर इसके अंदर से रूह कब्ज कर लो। यानी अब हिफाजत हिफाजत नहीं, अब हिफाजत को, इसके गार्ड्स को जो है वो लोअर कर दो। तो वो ऐसे ही काम करते हैं फिर, और फिर उसके बाद ये जान को कब्ज कर लेते हैं और जरा कोताही नहीं करते, बल्कि जिस वक्त हिफाजत का हुक्म था हिफाजत करते रहे, जब मौत का हुक्म हो गया तो यही मुहाफिज रूह कब्ज करने वाले फरिश्तों के साथ मिल जाते हैं। अजीब है, मुहाफिज भी जो है वो डाकुओं के साथ मिल गए, गोया के जैसे कि हमारे मुल्कों में आम होता रहता है, पुलिस वाले जो है वो डाकुओं के साथ मिलकर के वही लूटना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने भी यही निज़ाम बनाया है, वही निज़ाम जो है वो हमारे मुल्क में होता है, वही निज़ाम जो है वो अल्लाह ताला के मुल्क में होता है, पुलिस वाला ही डाकू के साथ मिल गया है, लेकिन ये फरिश्तों वाला मामला है और ये अल्लाह का मामला है, ये कोई जुल्मन नहीं हो रहा होता बल्कि ये निज़ाम के तहत ही हो रहा होता है। फिर सब अपने मालिक हकीकी के पास लाए जाएंगे, खूब सुन लो, उस वक्त फैसला अल्लाह ही का होगा और कोई दखल ना दे सकेगा। जैसे दुनिया में हम अपनी तरफ से फैसले करते हैं ना, यानी मेरी चलेगी, मेरी मानोगे, मैं फैसला दूंगा, उस वक्त सारे चुप करके खड़े हुए होंगे, कोई कुछ नहीं कह सकेगा, और वो बहुत जल्द हिसाब ले लेगा। असराउल हासिबी से तफसीर के बारे में किसी सवाल हो तो आप लिख के पूछ सकती हैं, फिर उसके बाद हम आरुफ मसाइल पढ़ना शुरू करते हैं, अगरचे के इसमें काफ़ी सारी तफसील है, लेकिन पीछे तो इससे भी ज़्यादा तफसील आरुफ मसाइल हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इन आरुफ मसाइल के पढ़ने में और ही लुत्फ है, और ही मज़ा है, कि जैसे हमारे हज़रत फरमाते हैं ना, होती रहे सना मेरे परवरदिगार की, इसके अंदर तो अल्लाह ताला की ही शान ही है, आयात के अंदर अल्लाह ताला की बात है। अल्लाह ताला का कलाम तो पूरा का पूरा कुरान है, लेकिन कलाम का एक हिस्सा जो होता है वो आद के बारे में होता है, तो कोई समूद के बारे में होता है, तो कोई नूह के बारे में, कोई यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, कोई किसी के बारे में। ये जो अल्लाह ताला ने आयात रखी हैं, ये खालिसतन अल्लाह के बारे में, ठीक है। वैसे कलाम के अंदर अल्लाह का जिक्र हर दूसरी लाइन में आ ही रहा होता है, लेकिन किसी दूसरे सियाक में आ रहा होता है, किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आ रहा होता है। यहां पर खालिसतन अल्लाह के कॉन्टेक्स्ट में बात आ रही है, तो इससे ज्यादा और अल्लाह के बंदे को क्या चाहिए। तो मारूफ मसाइल हम पढ़ते हैं कि गुनाहों से बचने का नुस्खे अक्सीर, हम गुनाहों से बचना वाले लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए एक नुस्खा सुभान अल्लाह ताला ने हमें खुद अता फरमा दिया। तमाम दुनिया के मजाहिब में इस्लाम का तुगराए इम्तियाज और उसका रुकन आजम अकीदाए तौहीद है। तुगराए इम्तियाज, गोल्ड मेडल या स्पेशल मेडल, यूनिक मेडल, और रुकने आजम सबसे बड़ा सुतून, जैसे कि नबी रसूल फरमाया ना कि इस्लाम के पांच सुतून होते हैं, ये खेमे के मानिंद है, उसके पांच सुतून हैं, उन सुतूनों ने खेमे के छत को जो है वो खड़ा करके रखा हुआ है, तो उनमें से जो चार सुतून हैं वो तो इर्द गिर्द के सुतून हैं, और एक सुतून जो है वो दरमियान का सुतून होता है, जो कि बाकी चार सुतून से ज्यादा ऊंचा होता है। वो दरमियान का सुतून क्या है? वो तौहीद है, वो तौहीद है, ठीक है। हमने उसको सिर्फ कलमा जुबान से पढ़ना बना दिया, जुबान से कलमा पढ़ना, ऐसा नहीं है। तौहीद है ये पहला सुतून, सबसे बड़ा सुतून, सबसे दरमियाना सुतून, सबसे आजम सुतून। ये तौहीद क्या है? इस तौहीद के अंदर सब कुछ आ जाता है। उसके अलावा नमाज पढ़ना, जकात देना, रोजा रखना और हज करना, ये चार सुतून है। उसके अलावा तौहीद, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर मेहरबानी फरमाई, जिनमें मैं और आप दोनों शामिल हैं, कि अल्लाह ताला ने एक अजीब जो है वो नुक्ता हमारे सामने खोला, कि एक या खुलवाया, जो भी करें आप कहें उसको, कि एक होता है झूठा खुदा, एक होता है सच्चा खुदा। एक होता है झूठा खुदा, एक होता है सच्चा खुदा। तौहीद क्या है? झूठे खुदा को छोड़ करके सच्चे खुदा की बात। तौहीद क्या है? झूठे खुदा को छोड़कर सच्चे खुदा की अताअत करना, सच्चे खुदा की इबादत करना। ठीक है, अब इसके अंदर सिर्फ आमाल नहीं आते, गुनाहों से बचना भी आ जाता है। क्योंकि गुनाह इंसान क्यों करता है? झूठे खुदा की वजह से करता है, नफ्स की वजह से करता है। ठीक है, तो जब आपने झूठे खुदा को छोड़ दिया, सिर्फ सच्चे खुदा की बात माननी शुरू कर दी, तो फिर वो तौहीद है। ठीक है, इसके अंदर यानी कोई कहे ना कि भाई कलमा पढ़ लिया, अब उसके बाद जो है ना वो नमाज पढ़ ली, और जो है वो रोजा रख लिया, और जकात दे दी, और हज कर लिया, ठीक है, तो इस्लाम पूरा हो गया, खेमा पूरा हो गया, चारों पिलर्स कर लिए, कलमा भी पढ़ लिया, पांचवा और पहला जो पिलर था फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वो भी कर लिया, और बाकी चार भी। लेकिन क्यों किया आपने ये? क्यों किया? क्योंकि अम्मी कहती थी इस वजह से किया, नहीं? अम्मी कहती थी इस वजह से किया, अब्बा कहते थे इस वजह से किया, या हमारे माहौल मुआशरे के अंदर सभी रमजान वॉज ए सेलिब्रेशन, है ना? आजकल तो रमजान को सेलिब्रेट किया जाता है ना, पहले तो हमारे यहाँ थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया जाता, अब तो सऊदी अरब के अंदर भी ऐसे ऐसे जो है वो कुमकुमे लगे हुए होते हैं, यानी आप देख लें हालात क्या जा रहे हैं, इतना तो सबको पता होगा ना सऊदी अरब के हालात कैसे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन रमजान के अंदर बत्तियां लगना पहले नहीं होता था, अब लगती हैं बत्तियां, और इतनी लगती हैं कि आप जो है वो हमारे यहाँ की 12 रबीउल अव्वल को भूल जाए शायद, या अभी अभी शायद उतने लेवल तक नहीं पहुंचे, शायद अगले साल उतने लेवल पे भी पहुंच जाए। जैसे कि ईद मिलाद उन नबी मनाया जाता है ना, उसी तरह से यहाँ पे रमजान मनाया जा रहा है। लेकिन बाकी हालात भी सुने ही होंगे आपने। ठीक है, तो सेलिब्रेशन हो रही है ना रमजान की, जिस वजह से रमजान बड़ा अच्छा लगता है, छुट्टी भी मिल जाती है सऊदी अरब के अंदर, पहले पाकिस्तान में भी मिलती थी, अब नहीं मिलती, तो इस वजह से मैं रमजान के रोजे रखती हूँ। जकात, क्योंकि बस सब लोग जकात निकाल रहे होते हैं, और मेरे पास माशाल्लाह इतना एक मुझे पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है, तो जकात भी कट जाती है, फिर बैंक में से कट जाती है, मैं जो जकात भी अदा कर देती हूँ, या अब वो निकाल देते हैं मेरी जकात, मुझे पता ही नहीं चलता। ठीक है, हज, हज तो वैसे भी बड़ी माशाल्लाह जबरदस्त ट्रैवल होता है, जबरदस्त किस्म का जो है वो एक सैर व तफरी का मौका मिलता है हज करने के अंदर। अच्छे अच्छे जहाज में बैठ करके जो है वो, फिर अच्छी अच्छी बसों में बैठ करके, फिर अच्छे अच्छे होटल के अंदर रहना, और नई नई जगह देखना, और लोगों से मिलना, और जो है वो एंजॉय करना, है वेकेशन एंजॉय करना। तो हज भी जो है वो यानी 5 स्टार हज, राइट, 5 स्टार हज तो अच्छा खासा, गरीब से गरीब बंदा भी जो होता है ना, या पुराने जमाने के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज के दौर में वो 5 स्टार हज कर रहा होता है, और जो अमीर से अमीर तर होता है वो तो पता नहीं 10 स्टार हज कर रहा होता है। ठीक है, तो क्या ये सब करके दीन पूरा हो गया? हरगिज नहीं, क्योंकि तौहीद जो थी ना, तौहीद का मतलब ये था ही नहीं, तौहीद का तो मतलब था झूठे खुदाओं को छोड़ना, और वो खुदा भी एक ही है असल में। तो ये है तुगराए इम्तियाज और रुकने आज। ठीक है, और ये भी जाहिर है कि सिर्फ अल्लाह ताला की जात को एक और अकेला जानने का नाम तौहीद नहीं। अजीब बात फरमा रहे हैं हजरत, अल्लाह की जात को एक और अकेला जानने का नाम तौहीद नहीं। हम तो आज तक यही समझते थे कि अल्लाह एक ही है, दो अल्लाह नहीं है, चार अल्लाह नहीं है, हजरत फरमा रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है, अल्लाह की जात को एक और अकेला जानने का नाम तौहीद नहीं, बल्कि उसको तमाम सिफाते कमाल में यकता और बेमिसल मानने, और उसके सिवा किसी मखलूक को उन सिफात कमाल में उसका सहीम व शरीक ना समझने को तौहीद कहते। सर पे से गुजर गई हमारे बिल्कुल जेट इंजन जेट स्पीड के साथ। ठीक है, ये क्या उन्होंने कह दिया, क्या लिखना, क्या कहना, क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो पता ही कुछ नहीं होगा तो फिर अमल कैसे करेंगे इसको। हम तो मुसलमान तौहीद के मानने वाले, लेकिन पता नहीं है कि तौहीद किस चीज को कहते हैं। ठीक है, तो फिर आप किस बात के मुसलमान हैं, कौन से मुसलमान हैं, वही रिवायती मुसलमान है, अम्मा अब्बा की वजह से मुसलमान है, या माहौल की वजह से मुसलमान है। तो ऐसा नहीं है ना, ऐसे ऐसे कोई मुसलमान नहीं होता। तो तौहीद को तो समझना पड़ेगा, कम अज कम तौहीद को समझना पड़ेगा। तो फरमाते हैं कि सिफाते कमाल में यकता, यकता का मतलब यूनिक, किसी और के पास ऐसी सिफात नहीं है, कमाल वाली सिफात जैसी अल्लाह के पास है। और बेमिसल यानी उसके लैसा बेमिसल ही शय, उसके मिसल कोई भी चीज नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी फरिश्ता नहीं है, कोई भी जिन नहीं है उसके जैसा, और उसके सिवा किसी मखलूक को उन सिफात कमाल में उसका सहीम व शरीक यानी उसका पार्टनर, उसका उसके साथ मिला हुआ, उसके साथ शरीक ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसे तस्लीम करने को तौहीद कहते हैं। और जिसने अगर सिर्फ अल्लाह की जात को, एक अल्लाह एक है, अल्लाह दो नहीं है, अल्लाह वन अल्लाह टू अल्लाह थ्री अल्लाह फोर, मैं कहता हूं नहीं अल्लाह ओनली वन बस, लेकिन सिफात वगैरह का मुझे कुछ नहीं पता, एंड आई डोंट केयर सिफात वगैरह के बारे में। सिफात तो मैं अपने अब्बू को भी कभी अल्लाह बना देती हूँ, कभी मैं जो अपने शौहर को अल्लाह अल्लाह की सिफत दे देती हूँ, कभी जो है मैं अपने किसी और खानदान के बुजुर्ग को अल्लाह बना देती हूँ, कभी जो है मैं मुल्क के सदर को अल्लाह बना अल्लाह की सिफत दे देती हूँ। अल्लाह बना नहीं देती, अल्लाह की ज़ात एक ही है, ज़ात अल्लाह की एक ही है, वो तो मैं मानती हूँ, लेकिन अल्लाह की जो सिफत है ना वो मैं उठा के कभी अब्बा कभी भाई कभी शौहर कभी बेटा है? कभी सिफत अल्लाह की, यानी अल्लाह की सिफत जो होती है वो पिंग पोंग बॉल की तरह चल रही है, पिंग पोंग बॉल
खुल रहे
की तरह चल रही है, कभी किसी को दे दी, कभी किसी को दे दी, कभी किसी के कोर्ट में फेंक दी, कभी किसी के कोर्ट में फेंक दी। ठीक है, यानी अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, अब्बू का हुक्म माना, अल्लाह का हुक्म को तोड़ा, शौहर का हुक्म माना, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, अम्मी का हुक्म माना, भाई अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के हुक्म को माना, राइट, या अपने पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के हुक्म को माना, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा। ठीक है, तो भाई हुक्म अल्लाह ताला खुद क्या फरमा रहे हैं, अला लहुल हुक्म, उसी के लिए हुक्म है। और पीछे क्या फरमाया था कि इनुल हुक्म इल्ला लिल्ला, इससे भी ज्यादा एम्फेसिस के साथ, हसर के साथ फरमाया था कि हुक्म तो नहीं है सिवाय अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह के हुक्म को तोड़ करके किसी दूसरे का हुक्म नहीं माना जा सकता। ला मासियतिल ला ताअतल मखलूक फी मासियतिल खालिक। तो ये आपने कौन सी तौहीद बनाई हुई है कि जिसमें अल्लाह की सिफा की जात को तो एक माना हुआ है, लेकिन अल्लाह की सिफात जो है वो पिंग पोंग बॉल की से भी जो है वो कम हैसियत रखती है। ठीक है, इसको तौहीद नहीं कहते। और जब तौहीद नहीं है तो फिर आप खुद ही सोच लें ना, इतना तो एक आम औरत भी समझ सकती है कि अगर कोई खेमा जो है वो गाड़ा जाए और चार जो है वो पिलर्स उसके चारों तरफ लगा दिए जाएं, यानी नमाज भी टका टक टका टक नमाजें भी पढ़ी जा रही हैं, और जो है वो रोजे भी रखे जा रहे हैं, और जो है वो ज़कात भी दे ही जा रही है, और हज भी जो है वो माशाल्लाह टूर करके वापस भी आ गए हैं हज के, और रोजाना हर हर साल करते हैं, लेकिन बीच का नहीं है, बीच में कुछ भी नहीं है, तो फिर ये खीमा का क्या हाल होगा। ये खीमा जो है वो रहने के काबिल नहीं होगा, ये रिहाइश के काबिल नहीं होगा। ठीक है ना, इट्स नॉट वर्थ लिविंग। इस तरह का जो टेंट होगा, इस तरह का जो खेमा या इस तरह की जो इमारत होगी, ये रिहाइश के काबिल नहीं है, ये रिहाइश के काबिल नहीं, कोई भी इसको देख करके जो है ना वो इसमें आकर के रहना नहीं चाहेगा, कोई भी इसको अच्छा नहीं समझेगा। ठीक है, तो तौहीद अल्लाह ताला में समझने की तौर से सदा फरमाए। यहाँ पे हम आज की क्लास रोक देते हैं, बाकी अगली अगली क्लास में शाल बात होगी। वाफ दावाना अनिल हमदुल्लाह।